أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. دین و دنیا قرآن کی روشنی میں آج ہم انشاءاللہ اس کا تیسرا پارہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم دوسرے پارے سے کیا سیکھا اور اس کی کچھ چیزوں کو دیکھیں گے. آپ دیکھیے کہ روز کے پارے میں ہمارے لیے صرف ایک گول ہے. اس دفعہ جب بھی ہم قرآن پاک کھولتے ہیں ہمارے پاس عمل کے بہت سارے نقطے ہوتے ہیں، لیکن اس سال اور اس اسپیشلی اس سفر میں ہم روز کی صرف ایک عادت پہ کام کر رہے ہیں. آسان ہے ایک پہ کام کرنا کہ بہت ساری پہ. ہر پارے کے اندر عمل کی باتوں کا ایک سمندر ہے. 2018 میں ہم نے ہر رکوع میں سے عمل کی باتیں نکال لی نا، تو بعض دفعہ بوجھل ہونے لگتی ہیں. ابھی بھی وہی قرآن ہے، لیکن کیا آپ کو ابھی تک دو پارے پڑھنے کے بعد یہ احساس نہیں ہوا کہ پہلا پارا سارے کا سارا حسد 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 حسد؟ کتنوں کو یہ فیل ہوا؟ جی الحمدللہ. اور دوسرا پارا صبر 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 صبر. مجھے تو یہی لگتا ہے چاروں طرف جو پڑھا کے جاتی ہوں وہ بھی میرے دل دماغ پہ رہتا ہے، اور جو اگلا پڑھانا ہوتا ہے اس کا شوق ہوتا ہے. مجھے سچ بتائیے، اس سے زیادہ اصلاح کا اور آسان طریقہ کیا ہوگا؟ پورے دن میں 24 گھنٹوں میں اگر صرف ایک بات پہ غور و فکر کر کر کے آپ کے میرے 24 گھنٹے گزر جائیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کا احساس نہ ہو؟ ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے شروع کے دو پاروں میں یہ چیز نہیں بھی کی، اب سے شروع کر دیجئے. ابھی بیچ میں ویکینڈ آئے گا، چھٹی نہ کوئی مل ہی جائے گی. آپ نے اپنے پیچھے پڑ جانا ہے، جس کو کہتے ہیں نا ہاتھ دو کے اپنے پیچھے پڑ جائیں. جتنا اپنے پیچھے پڑیں گے نا اتنا اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے گا اپنی اصلاح کا. ہمیشہ ہم دوسروں کی اصلاح کی فکر میں پڑے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کم ہوتی ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے میرے لیے ہماری اصلاح کرنا آسان کر دے. اور آسان ہے اپنی اصلاح، لیکن شیطان اس کا ہمیں موقع ہی نہیں آنے دیتا. ساری عمر دوسروں کے پیچھے پڑے رہے اور اپنا بھول گئے. دوسرے پارے کا موضوع تھا صبر. کل کتنے لوگوں کو موقع ملا صبر پہ غور و فکر کرنے کا، اور آپ کو یہاں سے جا کر یہاں آنے تک صبر کے کتنے موقع ملے؟ خاص طور پہ بچوں والی مائیں. کچھ مائیں کہتی ہیں ہم سے ہمارے بچے نہیں سنبھلتے، آپ دوسروں کے بچے کیسے سنبھالتے؟ تو اس کا جواب ہے صبر سے. ایک ماں عید کی چھٹیوں میں مجھے ملی، کہتی میں دن گن رہی ہوں، ابھی تو چھٹی کا دوسرا دن تھا تو انہوں نے میری مت مار دی ہے، کب سکول کھلے اور میں ان کو ٹیچروں کے ہاتھ پہ ڈال دوں. صبر کرنا پڑتا ہے نا، صبر صبر سے آتا ہے، ایسے ہی ہے نا. پھر آپ دیکھیں جب ہم نے ایک پارا پورا کیا اور اس کے بعد اینڈ پہ جب ہم اپنے محاسبے کے نقطوں پہ گئے، تو یہ بھی چیز آپ کے لیے صرف ریکال کروا رہی ہوں کچھ چیزیں، کہ محاسبہ شیٹ جو ہے نا یہ 5 نقطوں پہ ہے نا. محاسبے کے نقطے آپ کو میں ساتھ ساتھ آیتوں کے ساتھ دے رہی ہوں نا، اس وقت خود لکھا کریں. تو محاسبے کے نقطے تو ساتھ ساتھ چلے. دوسرے پارے کا تھوڑا سا پیچھے کا حصہ ریوائز کروا رہی ہوں. اب اس کے بعد دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ یاد رکھنے کی باتیں. محاسبے کو آپ خود کریں گے، آپ کو شیٹوں پہ لکھ دیا جائے، ریکارڈنگ کر دی جائے، پکڑ پکڑ کر بتا دیا جائے، پھر بھی آپ کی اصلاح نہیں ہوگی جب تک آپ خود کو نہیں یاد کروائیں گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے پارے میں سے یاد رکھنے کی کیا باتیں تھیں. نمبر ایک، آیت بر کو ذہن نشین کرنا تھا، کیونکہ یہ پورے دین کا درخت ہے، ایجنڈا ہے دین کا. آپ اگر اس پارے میں سے صرف لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب پہ نظر رکھیں گی تو آپ کو اسلام اے ٹو زی سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے، دوسری چیز کیا تھی؟ روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرنا ہے. اب تو رمضان ہیں کہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے تقوی رہے گا. کیا آپ کو اس سال کے رمضان کے بعد اپنے اندر تقوی محسوس ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو الحمدللہ، اللہ کی رحمت ہے. मुबारक के लायक है, थोड़ा कोई बात नहीं, कल ज़्यादा हो जाएगा। एक जुमला मैं बोल दूँ, अपने आप को शाबाश दिया करना, ये सीखें। इसी सेशंस में इंशाल्लाह तज़किया में एक दिन आपको इस मौजू पे भी बताऊंगी कि अपने आप को कैसे शाबाशें दें। ये जो हर वक्त यहाँ हम बुरे 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 बने रहते हैं ना, मैं ऐसी वह वैसी, ये भी अच्छा तरीका नहीं होता, ठीक है। तीसरी याद रखने की बात है कि आखिरत सिर्फ दुआओं से नहीं बल्कि कोशिशों से मिलेगी। रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वकिना अज़ाबन्नार, कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर चौथी बात इस पारे की क्या थी याद रखने वाली, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। वासान तो हिब्बु शैयन व हुवा शर्रुल लकुम, तो सिर्फ चीज़ों की ज़ाहर पे मत जाइए, क्या पता आज वो आपको अच्छी लग रही तो कल वो बुरी बन जाए, ठीक है। फिर उसके बाद पांचवी बात याद रखने की क्या थी दूसरे पारे में से, आपस में एहसान करना ना भूलिए। आपस में यानी वला तनसवुल फ़ज़्ल बैनकुम, याद है ये आयत कहाँ आई थी? तलाक के बाद मुतल्लिकीन का आपस में रवैया और मुतल्लिकीन के घर वालों का आपस में रवैया, हो गया ख़त्म हो गई मामला। तो ज़िंदगी में याद रखिए, इंसानी मामलात में कभी फ़जल भूलना नहीं, फ़जल मुराद हक़ से ज़्यादा दीजिए। और अगली बात, सब्र का दामन छूटने ना पाए। सब्र सब्र और सब्र, कितना सब्र आता है। घर जाते ही हो सकता है आपको कोई कड़वा जुमला सुनना पड़ा हो कल, तो आपने कहना मैं आज सब्र सीख के आई हूँ। आपके रवैये से पता चलेगा, आपकी वो बच्चों की तरह नोटबुक्स नहीं खोल कर देखेंगे आज क्या होमवर्क मिला है, और आप खोल के दिखाएं आज मुझे होमवर्क मिला है सब्र करना है इसलिए मैं आपसे सब्र कर रही हूँ। नहीं, आप चलती फिरती किताब बन जाएं सब्र की, ठीक है। चलिए दूसरे पारे में से आज का अहम नुक्ता क्या था। नंबर एक, तकलीफ़ और परेशानी में सब्र। ये तो बहुत सारे लोग करते हैं, कोशिश भी करते हैं और उनको पता भी है इसका, लेकिन जो अहम नुक्ता हमने सीखा दूसरे पारे में, नेमत राहत और आराम में भी सब्र करना। पहला कौन सा है? इस्तरारी, फोर्स्ड पेशेंस। और दूसरा कौन सा है? इख्तियारी। कल फ़र्क ये आपको इस पारे से समझ आया, आपको इस पारे से ये समझ आया कि अपने इख्तियार से सब्र करना और मजबूरी में सब्र करना, इसका फ़र्क क्या है? बस इख्तियारी सब्र कीजिए, अल्लाह इस्तरारी सब्र से बचाएगा। और अहम नुक्ता यह था कि दोनों किस्म के सब्र को अपनी ज़िंदगी में लाना है। क्या पता चला, खुशियों में भी सब्र, आप इसे बाहर नहीं जाना, जज्बात के नाम पर पागल नहीं हो जाना, अंधे नहीं होना, माँ को नचवाए बगैर शादी नहीं होता, बेटे की माँ ना नाचे तो शादी नहीं होती, ये याद रखिए, बेसब्री है। खुशी को कंटेन कीजिए, बाहर ना निकाल निकाल कर फेंकिए। और फिर दुआएं भी आपने सीख ली, एक एक करके याद करते जाइए, अच्छा मौका है। पूरे पारे में सिर्फ दो दुआएं थी जो आप सीखेंगे। फिर आज का काम क्या था इस पारे में, पांच लोगों से पूछिए कि अल्लाह सुभान ताला ने हमें क्या मकसद दे के दुनिया में भेजा है। फिर यहाँ तहरीर करें कि आपने क्या नतीजा खस किया, कि लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। क्या पता चला, मकसद हयात पूछिए। आपको पता लग गया बींग अ मुस्लिम हमारा मकसद हयात क्या, बोल दीजिए जिसको याद आ रहा है। बोलिए। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतम वसतल्ली तकूनु शुहदा अलन्नास। अब आप देखिए कि यहाँ हम एक क्लासरूम के माहौल में, और मैं ज़्यादा कोशिश भी यही कर रही हूँ कि आप लोगों को अमली मैदान में रख कर सिखाऊँ कि एक उस्ताद के साथ बैठ कर इल्म लेने में और उसके बग़ैर बैठ कर लेने में फ़र्क क्या है। उस्ताद का किरदार मुआशरे में बहुत अहम होता है। देखिए बहुत सारे लोग अपनी मजबूरियों और दूरियों की वजह से घर से भी क्लास ले रहे हैं इस वक्त। हमारे अपने, आपको बताऊं कि एक हैंडफुल स्टूडेंट्स ऑनलाइन पे विजाई के क्लासरूम में इस वक्त भी, माशाल्लाह जैसे यहाँ एडमिन्स हैं अनसारुल हैं, उनकी कंस्टडी में जैसे आप यहाँ एक डिसिप्लिन के साथ सीख रहे हैं ना, सेम इस वक्त पे ऑनलाइन पे भी एक क्लासरूम है हमारा, उसमें सीख रहे हैं लोग। अब उसमें कंट्रोल्ड माहौल होता है, क्या लिखना क्या नहीं लिखना, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। इसमें और राह चलते बहुत सारे, बल्कि इससे कई गुना ज़्यादा लोग वो होंगे जो बाद में इन रिकॉर्डिंग्स को घरों में सुनेंगे, इस वक्त भी सुन रहे हैं। कुछ मीडियम्स ऐसे होते हैं जिनसे लोग घरों में बैठकर सीख रहे होते हैं, फर्क बताने लगी हूँ। आप जो यहाँ आके बैठे हैं, जो आपको मिलने वाला है, और ख़ास तौर पर इस शहर में रहकर इस शहर तक पहुँच सकें और यहाँ आकर सीखें, जो आप लेकर जाएंगे ना, उसका कोई तकाबुल ही नहीं है। गैर मखसूस तरीके से आप सब्र सीख रहे हैं। कैसे? आप चूचा नहीं कर सकते, आप हिल नहीं सकते, आप फ़ोन नहीं अटेंड कर पा रहे बीच में, ऐसे ही कि नहीं? वॉशरूम में जाना भी आप सोचते नहीं, अभी नहीं उठते, ब्रेक में उठेंगे, तो ये सब्र आ रहा है। आप लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं कि आपके साथ वाले को मुश्किल ना हो। तो याद रखिए, एक उस्ताद के साथ बैठ के पढ़ने का मौका मिल जाए, इसी को इल्म कहते हैं। बाकी तो इन्फॉर्मेशंस हैं, इल्ला ये कि कोई अपने ऊपर इसको तारी कर ले। तो ज़रा सा देखते हैं कि उस्ताद का किरदार क्या है, क्योंकि आपके साथ इसमें टीचर ट्रेनिंग की बातों का वादा था, तो मैं तो इसको हमेशा ही अपने ऊपर लेके बात करती हूँ कि इल्म तो सभी दे देते हैं, लेकिन इल्म को हजम करना, जज्ब करना, असल में ये बड़ा गोल है। तो उस्ताद का किरदार क्या होता है? चंद कोटेशंस हैं, नोट कीजिएगा। किताब तो हर कोई पढ़ा सकता है, लेकिन दिल और दिमाग पर नक्श सिर्फ बेहतरीन उस्तादिज़ा छोड़ कर जाते हैं। आप अच्छी उस्ताद बनना चाहती हैं, और अगर आप उस्ताद हैं तो क्या आप एक अच्छी उस्ताद हैं? इसका क्राइटेरियन क्या है, अपने स्टूडेंट से पूछिए। क्या आपकी पढ़ाई हुई बातें उनके दिल और दिमाग पे असर छोड़ती हैं? फिर बेहतरीन उस्तादिज़ा कौन होते हैं, जो बेहतरीन सदक़ाए जारिया छोड़ कर जाते हैं? क्या सिर्फ पैसा कमाना, या मुल्क व कौम की तामीर में अपना हिस्सा डालकर जाना, ये हर एक सोचे। अच्छा उस्ताद दिल और दिमाग पर असरअंदाज होता है। कहते हैं कि टीचिंग द प्रोफेशन दैट क्रिएट्स ऑल अदर प्रोफेशंस। समझ आए? आपको जर्मनी की बात सुनाऊं, वेस्ट में मारूफ बात है, उस्तादों का पे स्केल बहुत ऊंचा होता है। जर्मन दुनिया की वो कौम है जिनको आज भी पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। तो वहाँ के कुछ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स टाइप हजरात ने नोट किया कि हमारा पे स्केल टीचर्स के पे स्केल से नीचे है। आपको पाकिस्तान के नाते से तो बड़ी हैरत हुई होगी। खैर, वो गए और जाकर उन्होंने ये बात सामने रखी कि देखिए, हम तो इतने बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, तो हमारी पे कम है, टीचर्स की थोड़ी है, तो हमारी ज़्यादा कर दें या बराबर कर दें। सवाल समझ आ गए? तो जवाब सुनिए, उन्होंने कहा, हम आपकी पे उससे ज़्यादा कैसे कर दें जिसने आपको डॉक्टर बनाया। दिस इज़ द रोल ऑफ अ टीचर। जब किसी सोसाइटी में टीचिंग के रोल को इज्जत, माल और ऑनर और उसको आला दर्जा नहीं दिया जाता, वो कौम कभी तरक्की नहीं करती। तो टीचर प्रोफेशनल्स को तैयार करता है, तो फिर टीचर कैसा प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए? अधूरे इल्म वाले और अखलाक और आमल के एतबार से अधूरे लोग क्या वो टीचर बन सकते हैं? और अगर ऐसे हसद वाले दिल वाले लोग टीचर्स बन जाएं और बेसब्रे उस्ताद टीचर बन जाएं, मुझे बताइए नस्लों में क्या होगा? तो याद रखिए, ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना, क्रिएटिविटी आपके अंदर डालना, ये उस्ताद का काम होता है। और उस्ताद क्या करता है? मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन फैसले करवाता है। हमें खुद नहीं पता होता हमारे अंदर क्या स्किल्स हैं, हम क्या बनेंगे, टीचर पहचान लेता है। वो कहता है, बात सुने, आप इस फील्ड में अच्छी हैं, जाके इसमें स्पेशलाइज कीजिएगा। जैसे माँ बाप आपके लिए एक फोर्स करके कोई प्रोफेशन चूज़ करते हैं ना, चाहे आप में खूबी है नहीं है, वो कहेंगे आप डॉक्टर बने, टीचर नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं, आप टीचर बहुत अच्छी बन सकती हैं, जाइए टीचिंग में काम कीजिए। तो टीचर जो होते हैं ना, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। गुड टीचर जो होते हैं, वो लोगों के जहनों में इस तरह से असरात छोड़ते हैं कि एक स्लाइड के अंदर अगर इंशाल्लाह आप देखेंगे बाद में कि किस तरह से एक अच्छा टीचर जहनों को मुसख़्खर करता है। मुझे तो लगता है कि जिस तरह गाड़ी का स्टेयरिंग है ना अहम, पूरी गाड़ी उससे कंट्रोल में होती है, टीचर्स आर कंट्रोलिंग द सोसाइटी। तो अब आप सोच लीजिए, फिर टीचिंग प्रोफेशन कितना नोबल प्रोफेशन है और हमें इसके लिए कितनी कुर्बानियाँ देने की ज़रूरत है। हमारी उम्मत मुस्लिम और ख़ास तौर पर पाकिस्तान नहीं उभरेगा जब तक यहाँ के टीचर्स की करेक्टर बिल्डिंग नहीं होगी, किरदार साजी नहीं होगी। माँ लड़ाकी हो ना तो बच्चा भी लड़ाका होता है, तो टीचर लड़ाकी होगी तो उसका स्टूडेंट भी लड़ाका होगा। फिर आप देखिए उस्ताद कौम के मेमार होते हैं, बेहतरीन उस्ताद बेहतरीन किरदार साज होगा। किरदार साजी में उस्ताद का बहुत किरदार है, वो तो हाथ में छुरी चाकू लेके बैठा होता है आपको ट्रिम करने के लिए, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं चलते, ऐसे नहीं खड़े होते, ऐसे इशारा नहीं करते। अजीम उस्ताद अपने तालिब इल्म का हीरो और इमाम बन जाता है। आप देखिए कि अच्छे टीचर्स हमेशा अपने स्टूडेंट्स के रोल मॉडल्स होते हैं, फिर इसी तरह अच्छे टीचर्स हौसला अफजाई करने वाले होते हैं। आम उस्ताद बातें बताता है, अच्छा उस्ताद बातें समझाता है, और आला उस्ताद फिर अमल करके दिखाता है। तो आपको मुझे खुद के लिए चेक करना है कि हम किस तरीके से अपने आप को बेहतरीन बनाएं, कैसे बने बेहतरीन उस्ताद, बेहतरीन स्टूडेंट बनिए। ये जो 1 सवा महीना 1.5 महीना जितने भी दिन का आपका ये कोर्स है, इसमें बेहतरीन स्टूडेंट बनने की नीयत कर लें। रूल्स को फॉलो करना है, वक्त पे आना है, वक्त पे जाना है, और हर रूल मानना है, और कुर्बानियाँ देनी है, पैसा लगाना है, वक्त लगाना है, मेहनत करनी है, इमोशनली अपने आप को कंट्रोल करना है। देखिए फिर आप कैसे बेहतरीन उस्ताद बन के यहाँ से निकलेंगे। कहते हैं कि मैं बेहतरीन इंसान तो शायद ना बन सका, लेकिन मैं बेहतरीन बच्चों की उस्ताद तो बन सकती हूँ, अपने तालिब इल्मों को कुछ ना कुछ तो सिखा सकती हूँ। सवाल कीजिए एज अ टीचर, अगर आप में से कोई टीचर है और अगर बनना चाहते हैं तो अपने लिए क्राइटेरियन बना लीजिए। अच्छे उस्ताद को दरसो तदरीस से मोहब्बत होती है, ये उसका प्रोफेशन नहीं होता। हाय जान छूटे, 45 मिनट का पीरियड है, ख़त्म हो मैं घर जाऊँ, नहीं। लव योर लर्निंग एंड टीचिंग, नई चीज़ें करने की कोशिश करता है अच्छा उस्ताद, ऑलवेज ब्रिंग न्यू आइडियाज़। मुस्बत रवैया रखना चाहिए अच्छे टीचर को, बी पॉजिटिव। टीचर ही शिकवे कर रहा है और उसी में हर चीज़ की नेगेटिविटी है, तो स्टूडेंट कैसा होगा। फिर आला ख्यालात और अजीम मकासद सामने रखता है अच्छा उस्ताद, माशरे में बेहतरी की उम्मीद रखता है। टीचर को हमेशा होपफुल होना चाहिए, और मुअल्लमी को सिर्फ पेशा नहीं बनाना, प्रोफेशनली करना है, यानी डोंट मेक इट प्रोफेशन बट डू इट प्रोफेशनली। जो बेहतरीन खूबी आप इसमें इस्तेमाल कर सके वो करें। अरस्तू का नाम आपने सुना होगा, अरिस्टोटल कहते हैं उसको इंग्लिश में, कहता है कि दोज हु एजुकेट चिल्ड्रन वेल आर मोर टू बी ऑनर्ड देन पेरेंट्स, फॉर दीज ओनली गेव लाइफ, दोज आर आर्ट ऑफ लिविंग वेल। कहते हैं कि जो उस्ताद अपने बच्चों की अच्छी किरदार साजी करते हैं ना, वो माँ बाप से भी ज़्यादा ऑनरेबल है, क्योंकि माँ बाप ने तो ज़िंदगी दिखाई दी है, उसका जरिया बने हैं ना, लेकिन उस्ताद ज़िंदगी की क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी लाइफ जो है देना वो सिखाता है। तो क्या पता चला आपको, मुझे ये पढ़ना पढ़ाना ये काम आसान नहीं है, लेकिन जिसने इसको प्रोफेशन नहीं प्रोफेशनली कर लिया, अल्लाह ताला उसके लिए इसको आसान करेगा। अब हम चलते हैं पारा 3 पे। पिछले पारे में सब्र था, सब्र की आप देखिए बहुत सारी हमें अल्हम्दुलिल्लाह स्लाइड्स मिली, यानी आप देखिए कि आपने किसी ने कोशिश की घर जाकर कल के पारे में से कुछ होमवर्क कुछ एक्टिविटीज़ बनाने की, अल्हम्दुलिल्लाह। फ़नी करीब, दूसरे पारे की झलकी, अल्लाह करीब है, उसको दूर ना समझो। फिर इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सब्र वालों के साथ है। वबशिर साबरीन, सब्र वालों को खुशखबरियाँ दे दो। क्या पता चला कि सब्र ही के इर्द गिर्द सारी खूबियाँ घूमती हैं, और जितना ज़्यादा आप सब्र को अपनी ज़िंदगी में जगह देते जाएंगे, कामयाबी और कामरानी आपके पहुँच उमेंगी। सब्र इज़ दी की टू सक्सेस। दुनिया के मामलात में भी आप कामयाब कब होंगे, जब आप में सब्र होगा। फिर आप देखिए कि सब्र रंग बदलता है, यही सेल्फ कंट्रोल है, यही सेल्फ डिसिप्लिन है, यही डिटर्मिनेशन है, यही इस्तकामत है, यही इंसान के कदमों को जमा देता है। और फिर इसी तरह से जब कोई मुश्किल आए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह के हैं और उसी की तरफ हमें लौट के जाना है। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, एक नुक्ता था दूसरे पारे का, तो मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूँगा, मेरा शुक्र करो और मेरी नाशुक्री ना करो। स्क्रीन पे आप स्लाइड्स देख सकते हैं, आपको इससे आइडियाज़ भी मिलेंगे। फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह इन्नल्लाह मा सबिरीन। क्या पता चला कि नमाज और सब्र का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। फिर उसके बाद हमने देखा दूसरे पारे में आयते बिर लैसल बिर आयत 177, याद रखने की चीज़ थी ये। फिर इसी तरह डोंट बी रिएक्शनरी, एकदम रद्द अमल का इजहार ना करें, ये है सब्र। बात सुनिए, गौर कीजिए, फिर रिएक्शन शो कीजिए। फिर इसी तरह इन नसरुल्लाह करीब, अल्लाह की मदद का इंतज़ार करना ये भी सब्र का एक हिस्सा है। और फिर हमने ये भी सीखा कि सब्र तो बोलिए सब्र के साथ आता है, सब्र कम्स विद सब्र। आप जितना सब्र करेंगे ना, आप उतना और सब्र करेंगे, और अगर आप बेसब्रे होंगे तो सब्र नहीं होगा। कहेंगे ना हाय गर्मी और लगेगी, हाय मर्चें मर्चें और मर्चें लगेंगी, हाय धूप और धूप लगेगी, तो ठंडे होके बैठ जाएं तो आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। यकीन करें, ये जो हैज़र्डनेस है ना अपनी तबीयतों से, ये निकालनी है। इसने आज हमारा सोशल सेटअप भी बड़ा ख़राब किया हुआ है, हॉर्न पे हॉर्न लाइन, उधर से रिक्शा निकल रहा है, उधर से साइकिल निकल रही है, यूं 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 आगे जाके सारे फंसे हुए हैं। फिर उस वक्त किसी एक को पकड़ के फेंकेंगे बाहर तो फिर बाकी गाड़ी चलेगी। ये बेसब्री है, ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगी इंशाल्लाह जब सब्र आएगा, और अभी तो बहुत कुछ सीखना है हमने। और फिर मसाइब खमसा हमने देखा था, वलनब्लुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जू, कोई ना कोई मुश्किल तो पड़ी रहेगी, ये तो ज़िंदगी है। एक दिन होगा जब आपके ऊपर दुनिया की सारी मुश्किलें ख़त्म हो चुकी होंगी, और वो वक्त होगा जब आप डेथ बेड पे मैयत की शक्ल में लेटे होंगे, और बाकियों पे मुश्किलें पड़ी हैं, आपको कोई काम नहीं होगा, क्योंकि जो मर जाता है बज़ाहर दुनिया के मुश्किलात से वो बच जाता है। अल्लाह ना करे कि यहाँ की ख़त्म हो तो वहाँ की शुरू हो जाए। वो कहते हैं ना कि मर के बिना चैन पाया तो किधर जाओगे। ये सोचें, ये आप और मैं सारा कुछ इसलिए कर रहे हैं कि मर के हमें चैन आ जाए। तो दुनिया में तो रहेंगी, बस सब्र कीजिए और जीते जाइए। और फिर उदखुलु फिस्सिल्म काफा, पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाए। हम पे बहुत सारी मुश्किलात इस हुक्म को ना मानने की वजह से भी आती हैं। फिर हमने देखा था कि अल्लाह की नज़र में कोई चीज़ अच्छी होती है लेकिन हमें बुरी लगती है, और इसका अपोज़िट। तो हर चीज़ जो हमें अच्छी दिखे ज़रूरी नहीं कि वो अच्छी हो। और दुआएँ तो हमने सीखी थी। आज इंशाल्लाह हम तीसरे पारे में जिस दुआ पे गौर व फिक्र करेंगे, सूरत बकरा की आखिरी आयत है, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला तौक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वाग़फिर लना वरहमना أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين। तो इसमें भी असल में हम अल्लाह से सब्र ही मांग रहे हैं।